शहीद हो गए, कुछ और तेरे लाल हुसैन।
हाँ है शहीदों का लहू खास अता फर्द को भी देता है एक ज़िस्त नई।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है तेरे लाल हुसैन, मैं हूँ आपका होस्ट शुजा रिज़वी। आज जिस शहीद के बारे में हम तज़किरा करने जा रहे हैं, उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सिप्ते जाफ़र साहब, ये वो शहीद अदीदान जो हर दिल अज़ीज़। और अगर आप वादी हुसैन जाएं तो आपको वादी हुसैन में ये एक वाहिद कब्र नज़र आएगी जो कभी सूखी नहीं है और जिस पर हर वक्त ताज़ा फूल फड़े रहते हैं। यकीनन बात यही है कि जो भी जवान वादी हुसैन जाता है वो उस कब्र के ऊपर पानी ज़रूर डालता है, अपने मुर्दों के पास ज़रूर जाता है, साथ साथ उस्ताद मोहतरम की कब्र पर ज़रूर जाता है और वहाँ पर फूल भी ज़रूर डालता है। और इंतज़ामिया ने वहाँ पर निकासी आप के लिए इतना पानी उस पर पड़ता है कि निकासी आप के लिए साइड में एक पाइप भी लगाया हुआ, अगर आप वहाँ गौर करेंगे। यह है लोगों की मोहब्बत का आलम। उस्ताद की ज़िंदगी में भी उस्ताद से मोहब्बत करते रहे और उस्ताद की वफ़ात के बाद भी उसी तरीके से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं उस्ताद को। और अज़ीज़ाने गिरामी, यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं है कि उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सिप्ते जाफ़र की शख्सियत ऐसी थी कि उसके अंदर बहुत शदीद जाज़िबियत थी और हर शख्स जो शख्स भी उनसे मिलता था ऐसा लगता था कि वो बहुत पहले से उन्हें जानता है, बहुत पहले से उसकी मुलाकात है। ये उनका तरीक़ाकार था। उस अजीम शख्सियत पे गुफ्तगू करने के लिए यकीनन ये साहतें बहुत कम हैं और एक तवील वक्त चाहिए कि हम बैठें और उस अजीम शख्सियत को डिस्कस करें, उनके हालात ज़िंदगी को डिस्कस करें, उनके तरीक़ाकार को डिस्कस करें, उनके अपने जो उनकी महारत थी, जो उनके जौहर थे, उस पर डिस्कशन करें। मुश्किल है मुख्तसर वक्त में डिस्कशन करना, लेकिन ये कि हमने आज यहाँ मदु किया हुआ है उस्ताद के बहुत ही नज़दीकी अफराद को जो उस्ताद के नज़दीक रहे। यकीनन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उस्ताद के बहुत नज़दीक रहे, हमारी जहाँ तक पहुँचती हम जिन लोगों को यहाँ आपके सामने ला सके। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफेसर नागपाल साहब का कि जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, उस्ताद के बहुत नज़दीकी हैं और सन 82 से लेकर उस्ताद की शहादत तक वो उस्ताद के साथ रहे। और गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज लियाकतबाद कासिमाबाद में पढ़ाते भी रहे हैं और उस्ताद के साथ वहाँ रहे हैं, ख़ुद भी प्रिंसिपल रहे हैं और फिर उस्ताद भी, यकीन जैसा कि आप जानते हो उस्ताद भी प्रिंसिपल थे। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप अपनी मसरूफियत के बावजूद भी हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। साथ में हमारे नासिर भाई तशरीफ़ फरमाएँ, आप जो हैं वो कौमियात के आदमी माशाल्लाह लोग जानते हैं उनको और आप IRC ट्रस्ट के हवाले से लोग बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर आए यहाँ पे, और साथ ही जो है हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए असफर, साथ के शागिर्द भी रहे हैं और माशाल्लाह दामाद भी हैं, तो घर की बातें दामाद से इंशाल्लाह सुनेंगे। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियत के बावजूद भी वक्त निकाल के यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। मैं बात का आगाज़ करूंगा प्रोफेसर साहब से कि प्रोफेसर साहब बहुत करीब रहे, तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा, समझना चाहूंगा उस्ताद की शख्सियत के हवाले से, क्योंकि आप बहुत नज़दीक रहे और आपने उनको एजुकेशन के हवाले से देखा, तो कुछ बताएं उस्ताद की अपनी एजुकेशन और अपने लेवल के बारे में। सुना था कि वो कमीशन का एग्ज़ाम भी पास किए हुए हैं और बहुत कुछ किया हुआ है, तो कुछ नज़र डालें।
जी मैं तो अपने लिए एक सआदत समझता हूँ, वो मेरे छोटे भाई थे मगर जो हमारा रिश्ता था वो भाइयों से बढ़कर था। 82 में वो लेक्चरर लगे, आप तदरीस की बात कर रहे हैं तो जिस हवाले से लोग उन्हें जानते हैं इसी महारत से वो पढ़ाते थे, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, उर्दू, समाजियात, व्हाट नाट, एक चीज मैं बता दूं, वो CSS पास किए हुए थे,
CSS
जी
कमीशन एग्जाम पास,
हाँ, और उसके बावजूद भी उन्होंने तदरीस को, हमारे यहाँ कुछ मुश्तरका बातें हैं, बिल्कुल मुश्तरका बातें हैं, और ये इतना गहरा रिश्ता उसी वजह से हुआ। मैं CSS को माफ़ कीजिए पढ़ाता हूँ, 23-24 बैचेस मैंने निकाली हैं डिफेंस में, मगर मैं CSS अफसर बनना नहीं चाहता, बिल्कुल कह रहा हूँ कि वो मुश्तरका सी बातें हैं बहुत सारी। हम लोग सादा लोग, लो प्रोफाइल रखने वाले लोग हैं, ये अजीम आदमी थे इंसान के हवाले से अगर मैं बात करूँ, मुश्किल से आप चराग ढूंढने से भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो आप सिप्टे जाफर के सामने रख सके। 82 में ये लेक्चरर होके आए, मैं 77 से लेक्चरर था, और यहाँ पे इस कॉलेज में 80 से,
अच्छा, आप सीनियर
सर्विसेज, जी मैं उनसे सीनियर था, अच्छा। मगर पहले दिन से पता नहीं क्या कशिश होती है या एक दूसरे की, हम जब मिले तो मिले, हमारे यहाँ गांव में या अली मदद कहा जाता है सलाम जो है जब हम देते हैं, यहाँ से बात शुरू हुई। ये क्या नहीं जानते थे, मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर रोशनी डालूँ। हमारे यहाँ टेबल टेनिस की यानी गेम हम खेलते थे जब हम फारिग होते थे, बहुत अच्छे लोग वहाँ पे, नाम तो उसका लियाकतबाद कासमाबाद है, जो कि ऐलान के बावजूद अब सिप्ते जाफर नहीं हो सका, अच्छा। उसका नाम होना चाहिए, ही डिजर्व्स, वो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल की चेयर पे उनको शहादत मिली है, तो उस कॉलेज का नाम इनके नाम से मंसूब होना चाहिए, मेरा मुतालबा है। टेबल टेनिस में इन जैसा माहिर कोई नहीं,
अच्छा
जी, यानी मैं दूसरे नंबर पे था, हाँ मैं भी ट्रॉफियाँ जीतता था, मगर ये क्या बला का खेल खेलते थे। शायरी में इनका कोई सानी नहीं है, अरबी हो, फारसी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, यानी महारत के साथ, और जूँ कि आप उनको उस्ताद कहते हैं, न सिर्फ सोच कवानी सिखाते थे बल्कि शायरी में भी कई लोगों के चीज़ें दुरुस्त थे,
बिल्कुल शायरी भी सिखाते थे।
वाह, उन्होंने इदारा कायम किया तो मुझे कहा कि आप, क्योंकि मैं गाता हूँ गना के हवाले से, तो मुझे वहाँ बुलाया कि आप इनको बताइए कि आवाज़ पे कंट्रोल कैसे होना चाहिए, सांस किस तरह लेनी चाहिए, तो जो जानते हैं वो बता दिया था। उनकी शख्सियत में जो बला की सादगी थी ना, मैं कहता हूँ कि अजीम लोग वो हैं जो अजीम होकर अपने आप को कुछ न समझे।
सही बात है,
ये बात। अपने आप को खाकसार कहते थे, और हमेशा आप देखेंगे मोटरसाइकिल पे सैंडल पहने हुए आम से बुशर्ट और पेंट में जाते जी थे। इनकी नज़र गाड़ी की गई, इनके चाहने वाले बहुत थे, बहुत थे, घर दे दिया गया। इत्तेफाक से हम दोनों में ये बात भी मुश्तरका है, मुझे भी किसी ने जगह ऑफर की तो मुझे कहते थे भाई देखो हम कैसे एक साथ चल रहे हैं। गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, अजीब बात है। अबू ज़र को मैंने कहा बेटा तुम चलाओ, हफ्ता भर मुश्किल से चलाया होगा, वो गाड़ी वहीं खड़ी खड़ी रेड रंग की थी, वहीं ख़राब हो गई, आखिर उसे निकालना पड़ा। हमेशा मोटरसाइकिल पे चलते थे, और एक दिन में 6-6, 8-8 प्रोग्राम अटेंड करते थे। रात को 12-1-2 बजे रूटीन में, हता कि मैंने एक दफ़ा भाभी से पूछ लिया, और मैं कहता हूँ कि मेरी भाभी अगर ये न होती इनके साथ तो सिप्ते जाफर न होते।
क्या बात,
यानी इतना उन्होंने साथ दिया, और ख़ुद भी बहुत मास्टर उस्तानी भी हैं, और हमारे इस काम में भी बहुत माहिर हैं, खुद जाकरा भी हैं मैं यूँ कह दूँ, और शायरा भी हैं, बिल्कुल एक जैसे दोनों। तो उनकी शख्सियत में जो गरीब परवरी थी, आप उन्हें एक इंसान देखना चाहते हैं तो सिप्ते जाफर की शख्सियत में देखें,
माशाल्लाह।
यानी सबके काम कोई भी हो, वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सुन्नी हो, शिया हो, बेवा हो, यतीम हो, तो बड़ी इंटरेस्ट लेकर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कहूँगा इसी हवाले से कि हम लोग उनसे सीखें इस बात को। एक कागज़ होता था, उन पे वो लिख के निकलते थे कि घर से कि मुझे ये करना है, और वो लिम्ब बड़ी लंबी लिस्ट होती थी, मैं जब कॉलेज जाता था तो कहता था वो लिस्ट दिखाओ आज कहाँ कहाँ जाना है तुम्हें। क्या यार शख्स था, बहरहाल उस पर मैं बोलता ही रहूँगा। मैं चाहूँगा
मैं जो जी मैं ये अब उसी मुत्तसिल बात इसी बताया, जैसे प्रोफेसर साहब ने नासिर भाई के बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व रहते थे और लोग चेक सिख हो ईसाई हो हिंदू हो कोई नो काम करते थे, तब वर्क एजुकेशन के हवाले से काम में उन्होंने जो स्कूल वगैरह की तमीर के हवाले से काम किया है कुछ आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे और कुछ बताएं लोगों को किस जगह पे बनाया हो कैसे बनाया हो क्या तरीका था उस्ताद का।
हॉस्पिटल्स बनवाई सोशल
सर दो मेरा उनका जो वास्ता पड़ा 1990 से जब IRC आबाद हुआ तो वहीं से, वैसे तो खैर बहुत पहले से उनको जानता था और कौन नहीं जानता था,
सही बात,
लेकिन मेरा वहाँ से उनसे थोड़ा कुर्ब हासिल किया मैंने और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुर्ब बढ़ता ही चला गया। 2012 में एक दिन मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि नासिर वो कल 3 बजे क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला उस्ताद कुछ नहीं कर रहे हमने तो अल्लाह ताला ने बादशाह बनाया है, क्योंकि पेशे के एतबार से मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मेरी अपनी कंपनी है। तो मैंने कहा उस्ताद सुबह उठ के मुझे किसी को जवाब नहीं देना होता है, आप हुक्म करें, कल यार कुछ 3 बजे आ जाओ, कुछ भी नहीं बताया गया 3 बजे आ जाओ। मैं चला गया, मैं वहाँ गया तो घर पे उनके तो वहाँ दो लोग और भी थे उनके साथ गाड़ी में बैठे और चले गए, कहने औरंगी टाउन जाना है। अच्छा। हम चले गए, वो गाड़ी चलती रही भाई औरंगी टाउन का है। मैंने कहा उस्ताद जी तो आखिर आ गया। कहने कोई बात नहीं, क्योंकि जहाँ हम पहुँचे तो एहतियात टाउन शुरू जाता है, एहतियात टाउन बल्दिया का हिस्सा है और कहने सीधे हाथ पे ले लो। तो वो रही समरोही कॉलोनी का एंड था बिल्कुल, वहाँ हम रुके तो मस्जिद मम्बारगा के पास बैत्याले बैत, वहाँ उतरे अंदर गए साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद वो उसके बराबर मिले गए बारगाह के। तो एक उस वक़्त मदरसा वहाँ पे चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, जब उसको कुछ टूटा फूटा था वो था, कुछ क्लासें ऊपर नीचे किसी की छत नीचे किसी कहीं दरियाँ तो कहीं कुर्सियाँ, मतलब बहुत वो थी। उन्होंने मुझे दिखाया, कहने लगे नासिर इस स्कूल को तामीर करना है।
अच्छा।
और बहुत अच्छी तरीके से इसको मतलब, मैंने कहा ठीक है उस्ताद हो जाएगा, लेकिन उस ज़माने में टारगेट किलिंग बहुत थी औरंगी टाउन में
और वो एरिया भी
इतना ख़तरनाक था। तो मैंने कहा उस्ताद यहाँ तो लाइफ रिस्क है। तो उस पर उन्होंने जो जुमला कहा ना, मतलब बस उस जुमले ने मुझे ख़त्म कर दिया। कहने लगे नासिर भाई बात यह है कि शहर में तो बहुत लोग छमछम करने वाले होते हैं, ये इस कच्ची आबादी में कोई नहीं आएगा, हम भी शायद इसको बनाने के बाद नहीं आए। यहाँ 350 बच्चे पढ़ते हैं दिन में, स्कूल है, और शाम को यहीं पे 300 बच्चों का मदरसा है जो कि उस वक्त हमारे सामने लगा हुआ था और बच्चे मौजूद थे वहाँ से। तो ये तो चाहे लाइफ रिस्क हो या कुछ भी हो, इसको तामीर होना है, ये मेरे ज़िंदगी का मकसद है। बस मैंने कहा उस्ताद बात ख़त्म हो गई, मैं जब आपका हुक्म है तो अच्छा बात है कि वो इतना मतलब मुत्तकी परहेजगार आदमी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वली नहीं था लेकिन वली जैसा था, तो उसको कौन इनकार करता। मैंने कहा बस बात ख़त्म हो गई। बहरहाल वो मैंने उसका बाकायदा आर्किटेक्ट को मैं ले गया, उसको मैंने डिज़ाइन करवाया। सर मुझे नहीं पता फंडरेजिंग का, मैंने उसकी
वो आबादी जो बता रहे हैं आप वहाँ से, तो
वहाँ से तो एक मतलब रुपये की वो नहीं थी, उस्ताद ने खुद उसको रखा। जब एस्टिमेट जब ड्राइंग वाइंग तैयार हो गई सब उससे अप्रूवल हो गई तो उसका एस्टिमेट किया गया 43 लाख रुपए का उसकी कॉस्ट थी, 43 लाख
या बता रहे 2012 की बात,
2012 की, और शहादत में खाल में 2013 में ना
जी जी
हाँ हाँ 13 तो 18 मार्च
जी, तो वो कॉस्टिंग कर ली तय हो गया, शेड्यूलिंग कर ली, मोड ऑफ पेमेंट बना दी गई और काम शुरू हो गया। और आप यकीन नहीं करें कि जब मोड ऑफ पेमेंट में जब टाइम आता था ना तो उससे एक दिन पहले मुझे तलाश करते फिरते थे नासिर कहाँ हो। मैंने कहा सर मैं तो साइट पर हूँ यार, कब आओगे IRC कब आओगे घर पे कब आओगे। मैंने कहा मसला क्या है, कह लेंगे यार वो तुम्हारी अमानत पड़ी है। मैंने कौन सी अमानत, कह लेंगे यार वो पैसे नहीं है। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, और अक्सर ये होता था कि वो बारगाह में हमारा ऑफिस सिक्योरिटी को दे के चले जाते थे, मतलब उनका मकसद ये था कि बस इन टाइम काम हो जाए,
इन टाइम काम हो जाए।
और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 43 लाख रुपए मुझे लाकर दिए और वो 6 महीने में स्कूल तामीर हो गया। कहाँ सर लेके आए, मैंने ना उनसे पूछा और ना उन्होंने मुझे बताया, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी।
सही बात, बिल्कुल
है ना। और वो तामीर हुआ और वो बड़ी सादगी के साथ उसका इफ्तिताह वहाँ के लोगों ने उस्ताद के हाथों ही करवाया।
अच्छा, उस्ताद के हाथों ही।
और ये मतलब दिसंबर 2012 की बात है और उसके 3 महीने के बाद इन ज़ालिमों ने जो ना वो।
अब क्या है वहाँ?
अभी वो स्कूल कायम है और वहाँ पे जो भी कुछ छोटी मोटी बात होती है मैं आपको भी लेके आपको भी
दिखाया। हमें ज़रूर उसकी सरपरस्ती करनी चाहिए, देखना चाहिए।
वो वहाँ पे मैंने कुछ फर्नीचर का मसला था तो जितना मुझसे हो सकता था वो मैंने हल किया वहाँ पे। उनको मैंने टेबलें वगैरह दी। वो जो साहब चला रहे हैं वहाँ पे अमीर अब्बास साहब, वो मेरे रबते में रहते हैं। अभी उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अब ज़रूरत पड़ रही है क्लासों की तो फर्स्ट फ्लोर के लिए, क्योंकि उसमें ग्राउंड प्लस 3 का प्रोविज़न है जो हमने उसको डिज़ाइन किया था।
मेरा बढ़ रहा है ना उसमें,
जी जी
हो रही
जी।
अच्छा, मैं असफर से सवाल करना चाहूँगा। असफर, ये तो खैर आपने सुना प्रोफेसर साहब की बातें, नासिर भाई की बातें, खुद आप उस्ताद के शागिर्द भी रहे हैं और शादी से पहले शागिर्द रहे, ऐसे ही
बाद भी शागिर्दी,
बाद भी उस्ताद की शागिर्दी आपके पास रही। अरे घर में उस्ताद को उस्ताद ही कहते हैं या अब्बू या कुछ और?
एक तो पहले शुजा भाई आपका ममनून हूँ कि आपने स्लैक समझा कि उस्ताद जैसी शख्सियत के बारे में लबकुशाई कर सकूँ, और दूसरा हदीयत अहनियत पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में जो कि आप पेश कर रहे हैं। तेरे लाल हुसैन परवरदिगार इसको कबूल फरमाए। और इससे पहले कुछ बोलूँ सर के सामने और नासिर भाई से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
बहरहाल जैसा कि उस्ताद का रिश्ता हर एक के साथ ही अनमोल था तो हमारे साथ भी इसी तरह से था, मगर अमूमन ये होता था शागिर्दी का रिश्ता हमेशा आगे रहता था, रिश्तेदारी हमेशा पीछे रहती थी। और इसकी भरपूर अक्कासी लोगों ने उसका मुजाहरा देखा कि कहीं पे भी रिकॉर्डिंग हो, कोई प्रोग्राम हो, हमेशा उस्ताद ने अबू जर को जो अपना फर्जंद होते हैं उनको पीछे रखा, अपने शागिर्द और दीगर लोगों को आगे रखा, जबकि माशरे की रविश से बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, मगर ये ऐसा था। तो शागिर्द की हैसियत हमेशा आगे रही और जो रिश्तेदारी है वो हमेशा पीछे रही।
कैसा घर में कैसे है उस्ताद?
भाई उस्ताद तो वही बात है कि अमूमन उस्ताद एक जुमला कहते थे कि असल में अगर आदमी के किरदार के और शख्सियत के बारे में अंदाज़ा करना है तो उसके घर वालों से राय लो, वो सही बताएंगे।
और मेरा पूछना है उस्ताद की एक तबीयत जो है ना उसमें मिजाज कौन सा था? तो घर में भी ऐसा ही?
जी बिल्कुल बिल्कुल, भरपूर इसी तरह से रहता था, बल्कि हर जगह इसी तरह से उनका बर्ताव रहता था। बल्कि वो अपने मिजाज में भी एक बात कहते थे कि मैं मिजाज के मामले में बहुत सीरियस हूँ, बहुत सीरियस होते हैं, इनकी एक जुमला होता था उस्ताद का। तो इससे इसमें कि उस मिजाज में भी नासिर भाई भी इस बात की गवाही देंगे कि बहुत सारे पैगाम होते थे, समझने वाले पे मुनहसर होता था कि वो उस पैगाम को ले ले, वही कि बहुत शाइस्ता अंदाज में पैगाम को पहुँचाना, और उसमें शायद वो ज्यादा पुरअसर होती थी बात, और फिर लोग उसको समझने वाले
यकीन।
एक सवाल मैंने एक दफा उस्ताद से किया था कि उस्ताद के अगर किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो तो क्या किया जाए, मुझे ये सवाल आपके सवाल पे अपना वो सवाल याद आ गया। तो उसका जवाब उस्ताद ने मुझे दिया था कि भाई ये देखो कि अगर तुम्हारा हक पामाल हो रहा है तो सिर्फ निगाह कर लो, और अगर कर सकते हो, और दूसरे का हक पामाल हो रहा है तो उस वक्त जरूर बोलो।
अच्छा,
उस वक्त खामोश ना रहो।
क्या बात,
तो ये जवाब था जो मुझे एकदम से याद आया इस बात पे। तो बस यही उस्ताद के बारे में था कि किसी का हक पामाल होता था तो उस वक्त
माशाल्लाह
जरूर
अच्छी बात है। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब?
जी बिल्कुल, बहुत मैं यहाँ से ही अपनी बात का आगाज करूँगा कि गुस्सा आप सब जानते हैं हराम है। गुस्से के मतलब मैं मौला अली की बात बताऊँगा कि आपने बारहा इरशाद फरमाया है जो मज़ा गुस्सा पीने का है, जो इस आग को कंट्रोल करने का है, वो और किसी चीज़ का नहीं। क्यों? अगर आप अपने आप को रोक सकते हैं तो यहाँ रोक के दिखाइए, बर्दाश्त की इंतहा है, चाहे आप वहाँ से चले जाएं, उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करना चाहूँगा, आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की मगर मेरी शख्सियत के साथ या मेरे हकूक़ को भी पामाल किया जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके कही हुई कड़वी बातें अगर मैं पी गया, जैसे मैंने कहा, तो ये आप हयात वो है कि आप 2 दिन के बाद मुझसे माजरत करने खुद आएंगे।
सही बात,
मेरी ये जो बर्दाश्त है ना, आप कि बर्दाश्त से बाहर चली जाएगी।
जी मेरा सवाल ये है अपना प्रोफेसर साहब, जैसे कि ऐसा होता है ना इस एहतजाज करते हैं उसमें बाहर निकल आते हैं, क्या एटीट्यूड रहा है कभी उस्ताद के सवाले से? जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि अगर किसी का और का हक पामाल हो रहा हो तो वहाँ खामोश नहीं रहना।
जी जी
तो टीचर्स के हवाले से ये एहतियात
बहुत खूब अच्छा कि आपने ये पूछा। जैसे मैंने बताया कि
जी
82 से 13 तक
जी
हमारा साथ रहा और वो हमसे छीन लिए गए, क्या इनका बर्दाश्त था। और वहाँ 3 दफ़ा हमने एहतजाज किया और किस पे किया वो भी बताता हूँ। बहुत अच्छा कॉलेज था, बहुत अच्छे असाज़ा थे।
आप डिग्री कॉलेज की बात?
जी मैं लियाकत आबाद कासमाबाद की बात कर रहा हूँ, जिससे आप सुनकर डर जाएंगे कि कौन जाएगा। इतना बेहतरीन स्टाफ और इतनी मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी आपको। इससे अंदाजा लगा मैं डीजे साइंस कॉलेज चला गया 96 में।
जी।
मगर जब मेरी अलविदाई तकरीब हो रही थी तो मेरी इस बात को लोगों ने इतना याद रखा है कि अक्सर कहते हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूँ मगर मैं मेके को नहीं भूल सकता है। ये मेरा मेका है और मैं बारहा जाता रहा, बारहा जैसे मेके दुल्हन जाती है अपने ससुराल से, तो वहाँ हमारी जड़ें थी यूँ समझे। और ये भी सुन लें कि मैंने 17 साल वहाँ काम किया है, ज़िंदगी में कहीं इतना बड़ा।
आप एहतजाज का तज़किरा कर रहे थे?
जी मैं बता रहा हूँ। तो इतना लंबा सा हम साथ रहे तो वहाँ पर 3-4 दफ़ा एहतजाज हुआ। किस बात पर हुआ? आप सब जानते हैं कि LLB में कोई नहीं पढ़ता और कॉपी करके इम्तिहान दिया जाता है, दिस इज ओपन सीक्रेट। MEd का इम्तिहान हुए, आम इम्तिहान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कॉपी करने दें, मगर ये जो 2 इम्तिहान है ना इसमें नामुमकिन है कि आप कॉपी रोक सकें।
अच्छा।
मगर हमें तो बड़ी बुरी लत लगी हुई थी, या तो उनको रोका भी हमने बहुत, बोर्ड वालों को रोका, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि भाई यहाँ नहीं करवाओ, यहाँ बड़े टेढ़े लोग हैं।
हाँ।
हालात के ज़िम्मेदार आप होंगे, लिहाजा बेहतर है नहीं कराओ। उन्होंने ज़िद की, बहुत मसला हुआ, लड़के लड़ने पड़े। जब लड़ाई हद से ज़्यादा चली गई तो मुझे अच्छी तरह याद है हमने डंडे उठाए। अब शागिर्दों को तो हम नहीं मार सकते ना
जी,
मगर अपना, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था। तो मुझे एक शख्स ने हाथ से पकड़ा कि आप बैठ जाओ। मैंने कहा क्यों बैठ जाओ, जब हम पर पड़ती है तो हम तो इनके साथ रहेंगे ना। ये सबसे आगे होते थे, ये भाग नहीं जाते थे।
अच्छा।
और वही बात है कि जब हम सबका मुश्तरका मुफाद आता है, सबसे अच्छा बोलते थे, सबसे अच्छी तकरीर करते थे, हमारे मामलात उठाकर हायर अथॉरिटीज तक पहुँचाते थे। जी मैं इनके साथ बहरहाल बराबर था, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी की वजह से ज़्यादा अहमियत थी कि मुझे वो चीज़ें ड्राफ्ट वगैरह करनी मुझे ही पड़ती थी। तो इस तरह 3 दफ़ा ऐसा कुछ देखने में आया और 3 दफ़ा ये सफ़े अव्वल में थे। और
जैसा कि उस्ताद ने कहा कि वो दूसरे का अगर हक हो तो उसका,
ये ट्रेनिंग है। और मैं चाहता हूँ कि आज के नौजवान यही सीख लें, क्योंकि अगर आप किसी हवाले से, इंसानियत के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, मौला अली के हवाले से अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी वो है जो दूसरों के लिए बसर की जाए।
बेशक।
और इत्मीनान वो है, मुझे सिप्ते जाफर जब मैं ऐसी कोई बातें कहता हूँ तो ये भाई मेरे सामने आ जाते हैं। ये इसकी अमली तस्वीर थी
कि जो दूसरों के लिए जिंदा रहते।
अरे आपको बताया ना कि पूरी लिस्ट बना के निकलते थे, कभी किसी बेवा का काम, कभी किसी यतीम के हकूक के लिए कहीं जाएंगे, किसी का सर्टिफिकेट बोर्ड से लेना होगा, खुद ऑफर करेंगे मैं ले आऊंगा।
अच्छा
जी। तो क्या कमाल की शख्सियत थी और गुनागुन शख्सियत थी। हेल्थ में मुझे कई दफा बुलाया, हॉस्पिटल्स कायम किए, स्कूल्स कायम किए, ऐसे ऐसे कफालत करते थे।
माशाल्लाह। इस पे भी हम मौजू पे डिस्कस करेंगे। हम आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेरे लाल हुसैन, मैं हूँ आपका होस्ट शुजा रिज़वी। इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।
कुछ तेरे लाल हुसैन।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं तेरे लाल हुसैन, मैं हूँ आपका होस्ट शुजा रिज़वी। हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाए प्रोफेसर नागपाल साहब, नासिर अब्बास साहब और उस्ताद के दामाद असफर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं नासिर भाई से, जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहाँ से जोड़ते हुए हमारे नासिर भाई से सवाल मैं करना ही चाहूँगा। नासिर भाई, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि वो टीचर्स की फलाह बहबूद के लिए बहुत आगे आगे रहते थे और टीचर्स का अगर कोई हकूक़ की बात होती थी तब भी खड़े हो जाते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उस्ताद की ये रही है, वो कौमियात के सिलसिले में और ख़ुद आप भी कौम के सिलसिले में तो काम करते रहे हैं, तो उसमें आपका साथ मैंने बहुत देखा है IRC के अंदर, और आपके मशवरे उनसे बातें बातें, तो आप क्या कहते हैं कि उस्ताद कौम के लिए क्या सोचते थे और किस तरीके से खड़े होते थे?
मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और बेशतर लोगों ने उनका ये जो है किरदार देखा होगा, वो हमेशा हक बात कहने के लिए, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। एक जगह वो महफिल में कलाम पढ़ रहे थे, तो जब वो पढ़ के नीचे आ गए तो उसके अंदर एक मौलवी पे शेर था। तो मैंने कहा उस्ताद इतने मौलवी बैठे हैं और आपने पढ़ दिया, कहने लगे मैंने तो पढ़ा इसीलिए कोई बोल के तो दिखाए
वाह,
या मुझे गलत साबित करो।
जी बात तो कहने की है,
मतलब अब कोई नहीं आता मौलवी की बातों में, एक कलाम था उनका गरली नहीं आते, रोशनी नहीं आती,
हाँ, जी जी।
उसका एक बंद था
जी जी।
कि अब कोई नहीं आता मौलवी की बातों में, तो वो उस पर कहेंगे कोई बोले। और इसके अलावा कौमियात के हवाले से एक दफ़ा एक जनाजा जा रहा था शहीद का, लालू खेत पे कुछ वो हो गया, उस्ताद IRC में बैठे हुए थे, कुछ लड़कों ने आके IRC में बहुत एहतजाज शुरू कर दिया रोड के बाहर, और ये वो उस्ताद फ़ौरन वहाँ से बाहर निकले और उन्होंने सबको लड़कों को बुलाया कि ये बुरी बात है,
अच्छा,
और ये पैगाम अच्छा नहीं जाता है, ठीक है ना, आप ये ऐसी हरकतें नहीं करें, और ख़ासतौर से इमाम बारगाह के सामने खड़े होके। और ये उनकी बात की तासीर थी कि उसमें हर मिजाज के लोग थे, हो सकता कुछ प्रोफेशनल भी हों, लेकिन सब के सब बिल्कुल खामोशी से चले गए। तो बाकी मैंने उनको ऐसा भी देखा है कि किसी ने कोई ज़्यादती की किसी महफिल में निजामत करते हुए किसी शायर ने, तो उसको वो टोक दिया करते थे, तो भाई ये बच्चा है, मतलब वो इस्तेमाल नहीं करते थे कि कोई बहुत बड़ा वो बैठा हुआ है। और एक दफ़ा एक महफिल है कराची की, बहुत मशहूर महफिल है, और वो महफिलें के बाद ही कराची में इतनी महफिलों का रवाज पड़ा, और वो है इमाम बारगाह अस्करी की
जी जी,
एक रजब की,
जहाँ सब शोरा होते हैं,
जी शोरा होते हैं,
मनकूत खान नहीं होता,
लेकिन वहाँ एक ज़माने में तो बहुत क्या बला का उसमें रश होता था, और जगह नहीं मिलती थी, आप अंदर नहीं जा सकते थे,
अच्छा,
जो बैठ गया तो बस वो बैठ गया। तो वहाँ पर उस्ताद का नंबर आया, तो हुआ ये कि उस महफिल की सदारत आज भी और शुरू से शारद अलवी साहब करते थे,
अच्छा।
लेकिन उस दिन सदर बदला हुआ था महफिल में,
अच्छा।
तो उसमें हुआ ये कि जब उन्होंने अपना पम्फलेट बनाया तो उसके अंदर उनका नाम सातवें नंबर पे चला गया, शारद अलवी साहब,
अच्छा।
मतलब पहले सदर साहब आ गए, नाजिम आ गए, फिर कुछ इंडिया से भी शोर आते उस महफिल के अंदर, उनके नाम आ गए, फिर जो कराची से बाहर से शोर थे उनके नाम आ गए, तो उनका सातवें नंबर पे नाम दिए। जब उस्ताद का नंबर आया तो उस्ताद ने कहा कि भाई देखो बात यह है कि मैं इस महफिल में पिछले 15-16 साल से शिरकत कर रहा हूँ, जब ये एक बल्ब में हुआ करती थी,
अच्छा।
और आज माशाल्लाह से ये क्या चकोचौंध कर देने वाली रोशनी और इतनी रौनक है और मनोहर बरकत है इसमें, तो उस वक़्त भी सदारत जो है ना वो सदर साहब जी करते थे, जब एक मेंबर पर बैठ के लोग पढ़ा करते थे, आज इतना बड़ा तख्त है और उसमें बहुत सारे शोरा बैठे हुए हैं और ये मौजे, लेकिन ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक अच्छा। आदमी जब मुसलसल इसके अंदर और इस पे
अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया
पे था, और ये कह के उन्होंने कलाम पढ़ा, उन्होंने अपना कलाम पढ़ के, मैं उस शख्सियत का सजालत जो करी थी उसका नाम नहीं लूँगा, तो वरना गलत फहमियाँ पैदा होंगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ब्रीफ करना पड़ेगा मुझे
जी जी।
उसके बाद वो ख़त्म हो गया प्रोग्राम, वो आ गए वहाँ से पढ़ के, तो अच्छा हम लोग तो हकीकत में इंतज़ार करते थे कि भाई उस्ताद पढ़े तो फिर हम लोग घर जाए तो वही वो उस्ताद जब पढ़ के निकले बाहर, खैर उस्ताद का एक मिजाज था, पढ़ने के बाद वो कम से कम एक आदमी को ज़रूर सुनते थे,
सही,
फ़ौरन महफिल से या महिला से उठ के नहीं जाते,
ठीक है,
तो बल्कि 2-3 लोगों को सुन के फिर वो बाहर निकले। आपको पता जब वो निकलते तो खुद अंजुमन थे, तो 20-25 लोग तो वैसे ही उनके साथ सिर्फ मुसावा करने के लिए मुश्ताक होते थे, तो खैर बात ख़त्म हो गई। अगले साल उनका नाम ही नहीं आया उसमें, उस महफिल में।
अच्छा,
तो मैंने कहा उस्ताद ये तो आपकी तकरीर कहने गए पे तो क्या हो गया भाई, मैं क्या यही महफिल है? कहना महफिल में नाम आने का मुझे वो नहीं है, लेकिन मुझे अगर मैं वहाँ से खामोश आ जाता तो वो मुझे रंज बहुत होता।
खुद को माफ न कर पाते क्योंकि ये उनकी आदत का हिस्सा था,
क्योंकि ये मतलब इंसाफ के खिलाफ था।
बिल्कुल
अदल मैं नहीं कहूँगा इसलिए कि अदल खुदा की शान है,
बेशक सही बात, सही बात।
ये इंसाफ के खिलाफ था कि मैं खामोश और लोगों की तरह खामोशी से आ जाता। और उस ये भी देखिए अलमिया कि वो जब महफिल ख़त्म हुई तो सदारती जो था उन्होंने कलाम नहीं पढ़ा, खिताब किया है।
अच्छा,
और मुशायरे की महफिल है तरही, ये भी जरूर देख लें आप। वो अलग उनके साथ अलग जाती हुई,
उनको तो फिर किसी और वजह से बैठाया होगा, कोई और रीजन
सर। लेकिन वो इतनी बड़ी महफिल थी, वो बहुत बड़ी महफिल थी कराची की,
सही है,
और अभी भी है महफिल, महफिल होती है,
समझना चाहिए था, सही बात।
हाँ, बड़ी छुट्टी नहीं होती है।
लेकिन हम क्यों ऐसे ऐसे तंग नजर हो गए हैं कि किसी ने कोई एतराज कर दिया या कोई हमें वो कह दिया तो उसको बुलाया ही नहीं? अच्छा, ये एक जगह नहीं हुआ, एक और जगह भी ऐसा ही हुआ है, एतराज की वजह से आप छोड़ देते हैं उस आदमी को कि जो कब से आपके साथ था, ऐसा क्यों है? और मेरा ख्याल है उस्ताद के साथ तो ये कई जगह हुआ है,
ये लोगों की अनापरस्ती कि वो हम कहते हैं ना कि
मतलब एतराज बर्दाश्त नहीं है
जी,
सच बर्दाश्त
खुद को चाहता है, और
आप एतराज नहीं कहिए इसको, सच बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल सच थी जो बात उन्होंने की थी। अगर गलत की होती तो उस वक्त कोई भी टोक सकता था ना,
टोक सकता था, बिल्कुल सही बात।
या साहिब सदर ये जो सदर साहब को लेकर आए थे जो वो साहब उस पर निजामत कर रहे,
जबकि मेरा ख्याल उन्होंने कोई टॉन्टिंग नहीं किया, उन्होंने कोई टॉन्टिंग नहीं बताया, एक उसूल बताया
उन्होंने ना, पीछे से कोई टॉन्टिंग की है। जब उनका नंबर आया पढ़ने का
जी जी,
तो अच्छा पढ़ने से पहले उनकी एक आदत थी कि वो कुछ ना कोई एक दो जुमले जरूर बोलते थे।
हाँ बिल्कुल सही है,
नहीं ना,
हमने यही सीखा उस्ताद से
जी। तो वो
महफिल बन जाती
जी, तो उन्होंने भाई उस दिन जो ना फिर उन्होंने यही जुमले बोल के और अपना तरही कलाम पढ़ा, और बड़ा मार्केट तो लारा कलाम पढ़ा वो उन्होंने, और वो अपना पढ़ के आ गए। दो साल तक उन्होंने उनको नहीं बुलाया।
अच्छा,
तो कहने मुझे
दो साल तक से उसके बाद बुलाया उस साथ,
फिर उसके बाद वो उनके घर गए।
अच्छा अच्छा,
और उनसे तलाफी की, अपनी गलती का इतराफ़ किया, और जो जो लोग इसमें हाँ तो उस्ताद ने माफ़ भी कर दिया ना,
बड़े दिल का,
उन्होंने उसको अलग का मसला नहीं बनाया।
वाह, ये बड़ी बात।
फिर वो तीसरे साल उस महफिल में
शरीक हुए।
ये बड़ी बात है, आप माफ उसको कहते हैं जब प्रैक्टिकली उसका सबूत दें। और माफ करना बहुत बड़ी खूबी है, अल्लाह कहता है तुम यहाँ माफ करो तो मैं तुम्हें माफ करूँ,
क्या बात है,
यहाँ बख्शो तो मैं तुम्हें बख्श दूँ।
बिल्कुल, बेशक बेशक।
और ये उनमें चीजें भरी हुई थी।
वाह, मैंने जो नाम नहीं लिए ना, जो उस महफिल में मौजूद थे वो इस वाकये को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाँ, इसलिए हम
नाम लेने की जरूरत है, सोशल मीडिया पे हम जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप सही कह रहे हैं। असफर, बिल्कुल अलग सा सवाल करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ये मुझे बताएं कि उस्ताद ने आपको तो ट्रेन किया है माशाल्लाह, मैंने देखा अभी आप क्लासेस वगैरह 6-6 घंटे की क्लासेस होती थी उस्ताद की IRC में, यहाँ नासिर भाई के पास वहाँ पर 6-6 घंटे का। अच्छा, फैमिली में और लोगों को भी उस्ताद ने ट्रेन किया है, मतलब क्या अबू ज़र को इसी तरह से लेके बैठे या बच्चों को दी गए?
ये इसमें मैं अपना नुक्ता नज़र या अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बताऊँगा।
हाँ,
कि उस्ताद ने मतलब
सॉरी चाय पीते चले
जी जी बिल्कुल
ठंडी हो जाएगी
कि ये कि औरों को ज्यादा सिखाया।
अच्छा,
शायद ये मतलब हद अदब जोड़ के बात कहूँगा, अबू ज़र को कम बताया मगर उसका असर मौला ने ये दिया कि अबू ज़र की आवाज़ आज दुनिया
मुख्तलिफ
है
उनकी, माशाल्लाह।
और वही कि मौला ने वही उनके अबू ज़र वो जो उनका जो उस्ताद का अंदाज है अदायगी था वो अबू ज़र के अंदर
वो
शौक वो ज़ौक वो
सब चीज़ें खुद ही आना भी कुछ उस्ताद
बिल्कुल जी बिल्कुल इसी तरह से। और यहाँ एक और कुछ चंद बातों की और वजाहत करूँगा, जो हमारी क्लासेस होती थी उस्ताद से जो हमारी गुफ्तगू रहती थी या जो तरबियत रहती थी उसमें ये होता था कि ज़्यादातर सोसखानी, अमन ये लोगों का ख्याल है कि सोसखानी के बारे में सिखाया जाता था। नासिर भाई ने तो खुद हमारी क्लासेस में बाकायदगी से मतलब शिरकत की और अब भी माशाल्लाह तशरीफ़ लाते रहते हैं, तो उसमें सोसखानी पे कम और इखलाकियात पे ज्यादा बात।
क्या बात है, क्या बात,
मतलब ये कि
अच्छा मैंने सुना है कि उस्ताद ये कब जब कोई सीखने के लिए भी आता था उनके पास तो एजुकेशन के हवाले से भी सवाल करते थे।
यकीनन, ये अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इदारे तरबियत सोसखानी इसके बेसिक उसूलों में से एक है कि ग्रेजुएशन से कम जो कोई होता है उसको हम एसोसिएट नहीं करते अपने साथ, सिखाते या चंद चीजें जरूर बता देते हैं, बस तरजीहात में हमारी ये होती है कि अपनी तालीम मुकम्मल करें। क्योंकि आपको बताया कि आज़ादारी में दो चीजें जो आजकल है वो बहुत नुकसान पहुंचा रही है उसको, एक प्रोफेशनलिज्म है और कमर्शियलिज्म है। तो ये दोनों जो लफ्ज़ थे इसकी नफी करते थे उस्ताद। तो अगर कोई एजुकेशन वाइज स्ट्रांग होगा तो कम से कम इस पे उसका उसके इन्हिसार आज़ादारी पे अमीर तकल्लुम भाई ने बहुत अच्छा कहा है एक शेर के, सारी दुनिया में फ़कत एक ही देखा मैंने बिन लिफाफे के बड़ा नाम कमाने
वाह
वाला,
वाह वाह
ये
वाह
दो मिसरे याद आ गए। तो
वाह
ये पूरी इस बात की अक्कासी करते हैं। तो उस्ताद की पहला फोकस तालीम पे होता था। दूसरी बात, अगर सोसखानी के पढ़त के हिसाब से भी देखें तो उस्ताद अगर उनका शुमार करते थे, अगर मैं इसको कहूँ कि एक या दो या तीन नंबर देते थे, तो अदायगी पे नहीं देते थे वो, और पूरे एक मामलात के ऊपर वो एक मुकम्मल पैकेज बनाते थे कि भाई उसका जो रख रखाव, उठना बैठना, चलना, बात करना, बानी मजलिस से मुंतजम कैसा है, वक्त वादे का पाबंद है,
अच्छा
किस तरह का कलाम का इंतखाब कैसा है। वो कहते थे कि ये जो सोसखानी IQ की सोसखानी है, और सोसखानी जो अच्छे लोगों को इजमा रखने का जरिया है। वो कहते सोसखानी मैं इसलिए नौजवानों को रागिब कर रहा हूँ कि अच्छे लोग जमा हों एक तरह, सोसखानी तो इंशाल्लाह साथ रहते रहते आ जाती है, क्योंकि वो एक कर तब है,
बिल्कुल
जब
सही,
तक करेंगे तब खुद ही आ जाएगी, आप बेहतर माशाल्लाह इस बारे में समझते हैं,
बिल्कुल सही बात।
मगर वो उसूल थे, लेकिन इन इन उसूलों को फॉलो करना है, तो उन पे हमेशा से फोकस रहा। जब भी, और एक जुमला बड़ा उस्ताद का बस्ते में भी मौजूद है, और कि भाई हमारे, हम जो लोगों को सिखाते हैं वो ये है कि हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल नफ्स में तवाज़ुन रखते हुए
वाह
खिदमत
वाह
आज़ादारी
वाह
को सर अंजाम देना
वाह
है।
वाह वाह वाह
तो ये
वाह
जो
वाह
ये पूरा वैसे एक जुमला है, आप सोचेंगे उसमें जो है
वाह
वो पूरा उनके
वाह
जो स्कूल ऑफ थॉट है या क्या उनका नुक्ता नजर था, उसकी तर्जुमानी कर रहा है। साथ में सर की एक बात में मुझे एक और बात याद आई कि वो जो बता रहे हैं कि वक्त वादे के पाबंद है उस्ताद,
हाँ
लिखने का जो काम करते थे, तो एक जुमला उस्ताद हमें कहते थे कि बज़ाहिर बहुत सादा सा जुमला है मगर इसकी गहराई बहुत है, कि कौन सा काम किस वक्त करना है और किस वक्त कौन सा काम करना है।
हाँ
ना, बज़ाहिर आपको लग रहा है कि एक ही बात
हाँ
है मगर इसमें बहुत वसअत है इस जुमले
फिर
में।
से जुमला बोले क्या,
बहुत
कौन सा काम किस वक्त करना है और किस वक्त कौन सा काम करना है,
वाह वाह, कौन
तो
सा
एक नजर
काम
आने वाली बात
किस
भी,
वक्त करना है और किस वक्त कौन
कौन
सा
सा
काम
काम,
करना है,
बताए लग रहा
भाई
है एक, मगर इस जुमले पर आदमी लिख के भी सोचे तो इसमें बहुत वसत है।
क्या बात
तो
है, क्या
इसलिए
बात।
ना
अच्छा मैं प्रोफेसर साहब एक सवाल ये करना चाहूँगा, ये जो जुमला है ना वो
जी।
शेर मिसरा जो अभी उन्होंने बताया बिन लफाफा के बड़ा नाम कमाने वाला, अब मैं ये पूछना चाहूँगा उस्ताद की, कुछ लोगों के जहन में कभी आता होगा कि उस्ताद तो जरा पैसा इसलिए शायद नहीं लेते कि अच्छी सैलरी का आदमी है, पैसा उनके पास मौजूद है,
वाह बहुत खूब, मैं खुद
आप
इसी
क्या
पे
कहते
बोलना
हैं
चाहता
जी।
था। इतने बेलौस
और डॉलर तो सबको
अपने,
अच्छे लगते हैं
हाँ मैं बताता हूँ क्यों नहीं
सर
लगते हैं, किसी को
जी।
नहीं भी लगते,
अच्छा
इतने बेलौस और अपनी मोटरसाइकिल में अपनी जेब से
अच्छा
पेट्रोल
मैं सुना
डालकर,
मोटरसाइकिल भी आप ही से ली थी, आप भी नहीं दी थी
वो एक
सबको
अजीब किस्सा था कि हम
बताने वो अच्छा।
अक्सर मजालस में जाते थे
जी।
तो साथ जब जाते थे तो मैं देखता था ये पीछे है नहीं, इनके पास ब्लू रंग की सुजुकी थी जिसमें ऑयल पड़ता था
अच्छा
और वो ऑयल प्लग में आ जाता था,
अच्छा
और ये सारा दिन चलते थे। एक सफ़र में दो दफ़ा जब मैंने इनको देखा कि रुक गए, क्यों हमें टाइम पे पहुंचना था, मैंने से कहा इस खटारे को छोड़ो तुम ये मेरी गाड़ी ले लो, क्योंकि मैंने उस वक्त जापान से जापान असेंबल्ड वो डब्बे में बंद होके आती थी,
अच्छा
कलेजी कलर था उस वक्त उसका बिल्कुल नया था, तो मैंने वही खरीदी थी। तो मैंने कहा तुम्हारे लायक ये गाड़ी है, कहीं नहीं रुकती, कहीं ख़राब नहीं होती, उसमें वो आयल वगैरह का चक्कर ही नहीं है, फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजन का मसला होता है। तो झिझक गए,
नहीं वो जो आप
समझ
जिस
रहे
गाड़ी
थे
की तस्करा कर रहे हैं वो भी मोटरसाइकिल थी,
वही वही मोटरसाइकिल ही बात कर रहा हूँ,
अच्छा
जो मैंने आपको ये गाड़ी सुनाई ये भी मोटरसाइकिल है, हुंडा CD70
जी, समझ
कहते हैं। बहरहाल मैंने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया, मैंने कहा तो उसने कहा ये तो महंगी है, मैंने कहा नहीं इसका तुम झंझट में क्यों पड़ते हो जब मेरे पास पैसा है, नहीं आपके पास इस गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, और वाकई नहीं थे यार, हम दोनों अपने हलाल की रोज़ी खाते थे। फिर यूं हुआ कि हमारे दूसरे दोस्त थे शबाद रज़ा, उनको बेनज़ीर ने हुंडा 70 दी थी, तो फिर ये तय हुआ कि वो हुंडा 70 मुझे दे देंगे और आप ये गाड़ी ले लेंगे। इस शर्त पे उसने ली वो गाड़ी मुझे, उन्होंने अपने पैसे भर कर, बड़े खुददार आदमी थे, जबकि मैं उनका बड़ा भाई था, मैं डांट भी सकता था उनको, वाहिद शख्स हूँ मैं तो, मगर वो क्या करूँ उनकी जो बेसिक तभी जो मैं जानता था ना उसके खिलाफ़ नहीं कर सकता था। मैंने वो गाड़ी कबूल की, वो 18,000 की पड़ी, ये 45,000 में भी नहीं मिलती थी, तो फिर उनके हवाले हुई और इतनी मोहब्बत हुई इनको इस गाड़ी से कि बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो भी इनकी इंजन बनाकर इसका रंग काला कर दिया, क्योंकि ख़राब हो गई थी, इसको रंग की ज़रूरत थी। मगर वही गाड़ी रखी हता कि शहादत के दिन उसका नंबर प्लेट जब सामने आया टीवी पे, तो मेरा बेटा कह रहा है अबू ये हमारी वाली गाड़ी है, उनका जी वही है। तो उनके क्या कहने हैं, मैं आपको आपका जो पहला सवाल था उस पर ज़रूर बोलना चाहता हूँ। हम पीटीवी पर मजलिस मसालमा
लिफाफे के बारे से सवाल था,
लिफाफे से जी वो जो उन्होंने कहा ना, बिल्कुल लिफाफे की बात सुनी है। तो जब हम गए, पूरा हुआ प्रोग्राम पूरा हुआ, तो प्रोड्यूसर ने एक वाइट सा लिफाफा हम सबको दिया जिसमें 500 रुपए थे, उस वक्त काफ़ी रकम थी 500 रुपए, हमने तो ले लिया आराम से।
वैसे नासिर भाई आज भी 500 रुपए देते हैं, बता दूँ आपको।
बहुत अच्छी। तो जब इनको दिया गया तो मुझे पता था इनकी बरकरारी का, मैं जानता था, तो ये उनको वापस कर रहे थे। वो कह रहे थे सर देखें ये पीटीवी है, ये गवर्नमेंट का पैसा जो निकल गया सो निकल गया, और अब ये हम वापस नहीं ले सकते। मैंने कहा नहीं नहीं आप ले लें, इसे बोतल मंगवा के पीजिएगा। तो इसके कान खड़े हो गए। मैंने कहा भाई आप नहीं ले रहे हैं तो इनकी मर्जी है ना, 500 रुपए से जो चाहे करें, वापस तो नहीं जाए। मैंने कहा आप ले लें, जो आप करते हैं खैर का काम उसी में, क्योंकि कभी नहीं लिए थे अपने पैसे, अब वो तो इदारा है वो तो देगा।
बिल्कुल।
तो ये अजीब शख्स थे। रहा सवाल हक्के लाल की रोजी, पैसा इनके पास बहुत था, बिल्कुल नहीं था। मैंने जैसे कहा ना कि मैं और वो एक ही बात है ना, जो मुझे तनख्वाह मिलती थी वो 2000 ज्यादा मिलती थी, क्योंकि मैं इनसे सीनियर था।
सही।
भाई हम अपना गुजारा इस फख्र से करते हैं कि किनायत हमारी बादशाहत है, इंतहाई सादा जिंदगी गुजारना और उस पैसों में किसी की मदद कर देना, इसको सिप्ते जाफर कहते हैं।
क्या बात है, क्या बात है।
बस वो शख्स क्या
लोग ये कहते हैं, ये नासिर भाई लोग ये कहते हैं कि उस्ताद की शर्ट्स जो पहनते थे वो गिनी जा सकती है, ये शर्ट्स पहनते
जी। मैंने बताया ना बहुत ही सादा सी
सादा जिंदगी, जैसे कि
खासतौर से उस पे जो चेकदार
चेकदार
डबल पॉकेट से,
मैंने भी आज यही कोशिश की कि डबल पॉकेट शर्ट पहन के
आऊं, डबल पॉकेट तो नहीं,
लेकिन लेकिन वो नहीं है इसके ऊपर जो कंधों के होते थे उनके
फ्लैप होता
है। इसी बात में मुझे एक वाकया याद आया उनका कि एक दफा मैं बूतराब मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था मगरिब की, तो जब नमाज़ ख़त्म की तो उस्ताद नजर आ गए। था खैरियत? नहीं नहीं यार, गुजर रहा था नमाज का टाइम था, मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लो। खैर वो वहाँ से बाहर निकले, कहने यार वो अली मंजिल कौन सी है? तो मैंने कहा खैरियत? कहने लगे, मैंने कहा उस्ताद ये दूसरा से चौथा मकान है उल्टे हाथ पे। कहने यार वहाँ जाना है। वहाँ गए हम, उन्होंने बैल बजाई, बच्चा आया। उस्ताद ने लिफाफे में एक इनका उस्ताद के बस्ते के साथ एक गुलदस्ता भी है जो छोटा जेब में रखने के लिए इमरजेंसी के लिए, तो वो उन्होंने उसको लिफाफे में रखा। और उस बच्चे, अच्छा वो बच्चा तो निहाल हो गया कि उस्ताद मेरे घर पर आए। वो उस्ताद चाय पिएगा? नहीं उस्ताद, नहीं यार चाय नहीं, मैं तो बस गुजारा था। मैंने कहा तुम्हें ये मैं गुलदस्ता दे दूँ, ये बेटा बड़ी काम की चीज़ है, उसको पढ़ना बहुत वो उसमें ना। तो अच्छा कुछ दिन पहले उसकी किसी शायद वालिद या वालदा की कोई मजलिस थी, तो वहाँ पे किसी ने एक लिफाफा दिया शागिर्द को किसी को, तो वो शागिर्द ये समझा कि ये कोई इन्विटेशन है, उसने ले लिया और उसने एज इट इज़ उस्ताद को दे दिया। उस्ताद ने खोला तो उसमें पैसे थे। तो ये अच्छा ये वाकया पेश आया घर जाकर।
अच्छा
जी, लिफाफा
लिफाफा खोला घर
जो होता है ना घर जाके, भाई हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है क्या है ना। तो वो वहाँ उन्होंने जो गुलदस्ता उसको वापस किया, उसके अंदर वो जो नोट रखा था वो उसके अंदर रखा हुआ था गुलदस्ते में, जो उन्होंने गुलदस्ते को लिफाफे में रख के, और वहाँ से वो ऊपर गया लड़का खुदाफिस कह के, और उन्होंने कहा नासिर मैं गया इससे पहले कि ये घर जाके कुछ कहे। और उन्होंने मोटरसाइकिलों की मारी और चले गए। तो सर ये अब आप बताइए, मेरे पास ऐसे भी वाकयात हैं कि एक साहब ने आके ये कहा कि नासिर साहब आपने मुझे लिफाफे में पैसे कम दिए।
अच्छा,
ये आपको इसके बाद मैं आपको सच्चा वाक्य सुनाऊंगा, ये आपको मैं ऐसे वाकयात भी मौजूद है। और एक आदमी वो जो घर जाके और फिर पैसे वापस करने आया है, तो सर क्या किरदार था वो। तो
असवर मैं एक बात जो मैंने उस्ताद से सुनी, अपने शागिर्दों को उस्ताद ने लिफाफा लेने से मना तो नहीं किया?
मना नहीं किया, मगर उसकी फिक्र ज़रूर बताई है। मतलब उस्ताद ने बताया यही, और खैर अमलन और अमली तौर पे अपनी शख्सियत से दिखाया भी। असल में ये बात है कि उस्ताद की फिक्र है, मना नहीं किया मगर उन्होंने यही बताया। इतने ऐसे इतने जुमले हैं कहने को उस्ताद के, जो हम लोग देखते थे वो कहते थे हम अगर हमारे जद हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी जहरा सलामुल्लाह, तो ये तो इसी तरह से है कि अगर मैं मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं उनका जिक्र करूं अपने किसी बुजुर्ग का और उसके पैसे ले लूं। तो बहुत सारी ऐसी तौजीह। फिर उस्ताद ये कहते थे, और ये हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह आजमूदा है, कि हम अगर नहीं भी लेते तो मौला किसी ना किसी जरिए से हमारे रोजगार रोजी में बरकत जरूर अदा
बिल्कुल
करते हैं,
बेशक।
किसी ऐसी नागहानी आफात बुराइयों से निकाल के ले जाते हैं जो जो तस्वुर में नहीं।
जी,
सो लेना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बस ये एक फिक्र थी उस्ताद की जो उन्होंने अपने
मुझे जहाँ तक याद
शागिर्दों
है
से।
उस्ताद के बड़े अच्छे जुमले थे, डिमांड नहीं करना, जो दे वो ले लेना, लिफाफा देख के फैसला नहीं करना। मतलब ये इतनी बड़ी बात है अगर आप इसको ज़रा गौर करें कि जो दे वो ले लेना, डिमांड नहीं करना और लिफाफा देख के फैसला नहीं करना। मकसद ये कि आपने नौकरी मौला हुसैन की है
जी,
आपने
इसका ये याद रखने की ज़रूरत है कि आप किसके सदके कर रहे हैं। और ये कभी वो नहीं भूलते थे, उन्होंने कई जिंदगियां बना दी
बेशक।
जिनको आप नहीं जानते। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, उन्होंने कई शरह वाली किताबें लिखी हैं, इल्मी हवाले से कह रहा हूँ, यानी पाकिस्तान स्टडी की, इस्लामियात की।
अच्छा।
शकील ब्रदर्स एंटर पे आपको दुकान है बहुत
हाँ,
बड़ी, उनको कारोबार में बरकत और उनके नाम को रोशन करने में सिबते जाफर शहीद का हाथ है।
सरफराज अहमद की दुकान है वो, जो
जी
क्रिकेट का जो वो है
जी,
कौन
तो
सरफराज अहमद, ये शकील ब्रदर्स की दुकान है ना उसकी।
जी, अच्छा।
उनको
अपनी जब भी कप्तान है
जी,
अपनी सारी गाइड्स जो बच्चों के लिए बेहतरीन नोट्स हैं, बेहतरीन
अच्छा,
नोट्स। इवन डीजे में मुझसे कोई पूछता था, सर हमें पाकिस्तान के नोट्स चाहते, तो मैंने कहा शकील ब्रदर्स के पास जाएं और पूछें प्रोफेसर सैयद सिप्ते जाफर की किताब दो। यानी क्या इल्म उन्हें नहीं आता था। उर्दू की गाइड आप लें, पाकिस्तान स्टडी की लें, कभी उनसे जो इनका हक था पैसे नहीं मांगे। किताब इनकी लिखी हुई है ना, तो वो इनको आकर लिफाफे में चंद रुपए दे जाते थे, खोल के न कभी देखे उनके मुंह पर, न कभी शिकायत की। मैंने इनसे इस बात पे लड़ा कि देखो अपने हक के लिए भी तो लड़ना चाहिए ना, ये लाखों रुपए कमा रहा है, तुम्हें थोड़ा तो उसका हिस्सा दे ना। नहीं, इसको हम कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी मनी देकर आपने किताब खरीद ली। अब सारे एडिशन वो निकालता था और खुद कमाता था, उस्ताद को पता नहीं होता था। इतने दरिया दिल आदमी, क्यों किसी की ज़िंदगी बनाए में आपने अपना हिस्सा डाल दिया, तो किसी का कारोबार बढ़ाने में आपने अपनी कंट्रीब्यूशन, इल्म की भी, सर्विस की भी, हर जगह उन्होंने ये सर्विसेज की और बेगर्स की। इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि जो लोग ये सुन रहे हैं ना, इसकी पैरवी करें। आपने कभी उनको उदास देखा, कभी रोते हुए देखा?
क्या बात है, क्या बात है।
हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी और लतीफा गोई, यानी ऐसी मजाक में ऐसी जबरदस्त बातें कह देते थे जिसमें एक बहुत बड़ा फिलसफा छुपा हुआ होता जी। तो ये मौला की देन है, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी अगर परवरदिगार के आपको करीब जाना है ना, तो उसकी सिफात अपने अंदर पैदा करें तो वो आपको पसंद करने लगेगा। और सबसे बड़ी सूफी की जो आदत है वो है सका दो,
बिल्कुल बिल्कुल,
लेता कभी नहीं। वो दो दोने वाला हाथ जो है ना, वो सिप्ते जाफर था
माशाल्लाह। अच्छा, ये एक बात नस्ल में भी सवाल करना चाह रहा हूँ। उस्ताद ने शायरी भी की, उस्ताद ने जो है वो सोसखानी भी की और लोगों को ट्रेंड भी किया। मजालिस कोई ऐसी चीज़ें मजालिस हैं जो उस्ताद ने कायम की हों, या मीलाद या महफिलें उस्ताद की कायम करता हूँ आजकल?
मजालिस के हवाले से तो मैं अब जैसे कि कहूँ कि मैं जब से IRC में मजलिस कायम हुई, क्योंकि IRC की ज़्यादा एज नहीं है, 90 में बारगा बना हो बायदा, तो 90 से और ता
शहादत
शहादत उन्होंने सोसखानी की
वो तो मैं विटनेस हूँ।
और कोई भी,
और बल्कि वो मुझसे ये भी कहते थे कि भाई सलाम के तुम खुद जिम्मेदार हो जाओ, ना पढ़ो तो किसी और को भिजवा देना, लेकिन उस एरिया के तुम जिम्मेदार हो जाओ। जैसे मैं सोसखानी का जिम्मेदार हूँ, अगर मैं नहीं सोसखानी के पहुँच पाऊंगा तो किसी को भिजवाऊंगा।
ये ऑर्गेनाइजेशन है।
अब
यानी उसको सफर ना हो।
एक खूबसूरत वाक्य सुनाऊँ मैं आपको सिलसिले में। एक साल ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े जाकिर आ गए और उन्होंने कहा कि भाई वो अच्छा, मैंने बहुत मुखालफत की, लेकिन पूरी ट्रस्ट जो है ना वो ज़रा कुछ मिजाजन होती है ना कि चका चौंध हो जाएगी और चमचम हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी और रोड बंद हो जाएंगे, तो वो उस पर और जो हमारे के यहाँ का जो रवाज है कि वो सकीफाई अंदाज के मतलब दिमाग तो नहीं गिने जाते, सर गिने जाते हैं,
जी जी बिल्कुल,
वो फैसला हो गया अक्सरियत से कि भाई वो होगा।
हाँ,
उसके बाद उन्होंने दो तीन शर्तें लगाईं, उसमें एक शर्त ये थी कि सोसखान हमारा होगा।
अच्छा।
और अशरा उला है, उस पर बहुत मुबासा हुआ मेरा भी तो। और अच्छा, आपको थोड़ा, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से बाल सफ़ेद हुए तो मिजाज में थोड़ी सी
नरमी
आ गई है, वरना अगर आपको IRC की इनिशियली दास्तान पता हो तो वो मैं बताना भी नहीं चाहता अपने मुँह से। तो वो मैं बड़ा रैश हुआ और उस पर तो फिर वो चेयरमैन साहब ने बोला, यार नाशिर छोड़ दो ना, होने दो यार इसको। अच्छा, उसमें ये था कि वो जाकिर बहुत बड़े थे और माशाल्लाह से मुआवजा भी अच्छा खासा लेते थे, तो जो साहब उसको वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी ये हम मौलाना हमारी जिम्मेदारी होगी, इसलिए उनकी शरारतें भी मान ली गई। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल मरहला कि मैं उस्ताद को ये कैसे कहूँ कि उस्ताद आपने इस साल सुस्खानी IRC में नहीं करनी। मतलब ये आप इस बात का अंदाज़ा खुद भी शायद कर सकते हैं।
बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा, मतलब बात ये कि इस साल अगर नहीं करनी तो अगले साल दोबारा फिर कैसे करनी है?
सर मैं बड़े शशोपज में मैं उस साथ घर पर गया। अच्छा, अक्सर मैं रात को 12-1 बजे के बाद ये टाइम मिलता था उनसे मिलने का, घर पहुँचने का भी टाइम यही था। तो मैंने कहा उस्ताद आ रहा हूँ, कह तुम अच्छा करो 1 बजे तक आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा घर गया, पहले तो इधर उधर की बातें होती रही, फिर उसके बाद में उस पर आया। मैंने कहा उस्ताद कुछ ऐसा हो गया और आप बोले तो मैं टेस्ट को उलट देता हूँ, जैसे शमसी को उल्टा था, मतलब इतनी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप उनकी ख्वाहिश पूरी होने दीजिए और मेरे लिए कोई मसला नहीं है ये। तो मैंने कहा मैं आपसे सिर्फ मशवरे के लिए आया हूँ कि कोई मैं ऐसा फ़ैसला करूँ उससे पहले मैं आपसे ज़रूर मशवरा कर लूँ। क्या लगे? नहीं, आप इसको होने दीजिए,
जैसा हो रहा है
वो सोसखाने जिससे भी करवा लें करवा लें, मुझे कौन सा, कोई मेरे लिफाफों में फ़र्क थोड़ी कम थोड़ी हो गया कि जो मुझे परेशानी हो।
सही बात।
और उस साल तारीख में महफिल मुर्तज़ा में मजलिस से पहले सोसखानी नहीं होती थी और अब भी नहीं होती है, और उस साल सोसखानी हुई क्योंकि वही टाइम IRC का था। तो उन्होंने कहा, उन्होंने रखा था कि अगर सोसखानी होगी तो उस्ताद करेंगे, और उस साल उस्ताद ने उसी टाइम पर वहाँ सोसखानी की। और फिर बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि वो अगले साल उन साहब को पूरी ट्रस्ट को मना करना पड़ गया कि नहीं भाई हम आपका फोर्ट नहीं कर सकते। और फिर उस्ताद ने दूसरे साल बगैर किसी उसके मतलब किसी को एक लफ्ज़ नहीं बोला कि मियाँ ये क्या तरीका थोड़ी है कि आपने मुझे जब दिल से हटा दिया जब चाहे बुला लिया।
हाँ, यही बात है।
नो मतलब नो कमेंट्स, उन्होंने कोई बात नहीं। और
ये होता है मामला फैमिली
में समझना। एक जुमला कहते थे वो कि भाई ये IRC मेरा होम ग्राउंड और होम क्राउड है, तो इसके लिए मेरे पास कोई वो नहीं है,
सात मुहर्रम को जो उस्ताद को, सात या आठ मुहर्रम को जो लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन पढ़ते थे तो लोग इंतजार करते, 6 मुहर्रम को या 7 मुहर्रम को,
8 मुहर्रम को,
मुहर्रम का है चांद करबला के।
हाँ, यको मुहर्रम का
लोग इंतजार करते। उसमें वाकई मुझे याद आया जो अखबार में ऐड उन्होंने कहा था कि भाई अब लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए, नासिर भाई जिस वाकई की तब इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने नासिर भाई से कहा था कि अखबार में ये ऐड दिलवाए कि इस साल है चांद करबला के जो है अगर कोई सुनना चाहता है तो महफिल मुर्तजा में आए,
अच्छा
वहाँ पे पेश करूंगा। अच्छा, ट्रस्ट की तरफ से ऐड किया था कि लोग यकुम को वो सलाम सुनने आते थे।
बिल्कुल,
अभी IRC की रिवायतें वही उस्ताद के ही।
आज भी IRC में पहली मजलिस में सलाम उस्ताद की आवाज में ही।
अच्छा, वो आप
और ये बरकरार रहना चाहिए
और वो रिकॉर्डिंग उनकी वो हर साल चलती है।
और मिलाद सर, मिलाद,
और उसके अलावा IRC का 2 शवाल का जो मिलाद है, मैं तो नहीं कहता इसलिए कि मैं तो उसके फर्ज बिछाने वालों में से हूँ, ये उस्ताद का ही कायम करता है कि मौला हुसैन की दरगाह है यहाँ पे, तो शबीह रोज़ा है तो मौला हुसैन का तो मिलाद होना चाहिए।
बिल्कुल।
तो वो उन्होंने उसका बुनियाद रखी। और फिर मेरे का उस्ताद ऐसा है कि इसको मैं जो भी मैं कर दूंगा लेकिन इसका नाम रख दें ताकि मेरे बाद भी ये सिलसिला इदारा करता है, ट्रस्ट करे ना करे,
करे ना करे,
इदारा करे। तो उन्होंने उसका नाम रखा बज़्मे सैयद शोहदा।
अच्छा
जो मैं अक्सर लिखता हूँ,
जो आपकी मस्जिद का नाम भी है, वो
मस्जिद का, मेरे मस्जिद का भी नाम है, लेकिन
सैयद शहदा मस्जिद सैयद शहदा
जी
यही नाम है ना
जी, मस्जिद
जो IRC के नाम से मारूफ है,
IRC के नाम से तो मशहूर हो गई है, मतलब ये वैसे मस्जिद का नाम सैयद शहदा है
जी।
वो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और उसके अंदर उस्ताद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
मेरा ख्याल है कि इस कराची का एटलीस्ट सबसे बड़ा मिलाद है शायद वो।
सर एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलाद है, और जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलाद का मतलब ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मिलाद है।
उर्दू स्पीकिंग के लिए, जो उर्दू बोलते हैं लोग,
मतलब जो
अक्सरियत के
शायरी में उर्दू शायरी के हवाले से, क्योंकि उसका हुस्न ये है कि सर उसमें दो होते हैं सेशन, एक तरही शायरी का सेशन होता है और दूसरा
मिस्टर तरही उस्ताद ही देते रहे,
हमेशा उस्ताद देते रहे। और जब शहादत से 15 दिन पहले और बिफोर टाइम, क्योंकि शहादत उनकी है रबी अव्वल रबी सानी में, जमातुल अव्वल में, और वो मुझे उससे पहले एक दिन, बल्कि आप लोग भी साथ थे जब क्लास ख़त्म हुई, तो उन्होंने उनसे बोला भाई तुम लोग सब जाओ, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है।
जी वो अक्सर आप,
और वो सर वहाँ पे हम चबूतरे पे बैठ गए गेट के, और 2:30 बजे रात को गए वो, और वो भी ऐसा हुआ कि वो बिरयानी थी नियाज में उस दिन बच गई थी, तो सबको बांट दी, उस्ताद को भी थैली जाती, तो गाड़ी के पीछे उन्होंने बांधी हुई थी, तो बिल्ली तंग कर रही थी, तो मैंने कहा साहब अब आप चले जाइए 2:30 बज रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई यार वो तू मिसरा तरह तो ले ले यार, है ना।
अच्छा
तो हाँ, तो उन्होंने मिसरा तरह निकाला, पेन निकाला और मुझे लिख के उन्होंने मिसरा तरह दे दिया। दो सवाल का मिसरा तरह ये है,
याद है
वो विस्फात तो नहीं आ रहा, इसलिए इतने सारे उन्होंने,
वैसे आपने जो बांधने की बात की ना, वो स्कूटर पे अपनी मोटरसाइकिल पे एक दफ़ा मैं अक्सर देखा मैंने प्रोफेसर साहब कि उस्ताद जब किसी मजलिस से आते थे तो उनको जो हिस्सा मिला था, जो
तबरुक
मिलता था, वो स्कूटर पे ही बंधा हुआ था, बाइक पे उनके बंधा रहता था, कभी उनसे क्या इसको निकालने के लिए यार अभी कोई लेके जाएगा तो भूखा ही होगा।
ये होना चाहिए। अच्छा मैं एक खास बात आपको बताऊँ, उसके बगैर इनका जिक्र नामुकम्मिल रह जाएगा। इंसान दोस्ती, इंसान परस्त आदमी शहीद सिप्ते जाफर, IRC में न सिर्फ आपकी मजालस होती हैं मगर बहुत बड़ा इल्मी अड्डा बना दिया। प्रोफेसर करार हुसैन साहब थे खुसूसन, यानि तमाम मजाहब को बुलाकर उनके लेक्चर्स करवाए। मुझसे कहा गया आप तसव्वुफ पे लेक्चर दें। मैं जब गया वो दिसंबर का महीना था, 30 तारीख थी, इतनी सर्दी थी कि वो दरियाँ लगी हुई थी, तो उनकी बेटी और दामाद आए हुए थे प्रोफेसर करार हुसैन के। एंड में उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारा बहुत तशना है, एक लेक्चर और दीजिए। तो उनके असरार पर मैंने कहा ओके कल दूसरा होगा। दूसरा लेक्चर दे मैंने जब मैं गया वहाँ तो प्रोफेसर करार साहब बहुत हेविली रैप्ड अप खुद तशरीफ लाए। मैंने देखकर हैरान हुआ, मैंने कहा आप इस सर्दी में, बेटा मैं क्या करूं, मेरी बेटी ने कहा इस शख्स को सुने मैं तुम्हें सुन। मैंने कहा हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, आपके शागिर्द हैं, आपके कुछ भी कह लें। न सिर्फ वो बैठे मगर उसके इख्तिताम पर इतना अच्छा बोला उन्होंने। फिर मुझे कहा कोई ब्राह्मण ला के दो, हम यहाँ पे हिंदुज़म पे कराना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है।
अच्छा।
क्रिसमस पे वो जाते थे क्रिश्चियन दोस्तों से मिलने के लिए, दिवाली पे आकर वो फुलझड़ियाँ तक, वो हमारे पास तस्वीरें हैं। यानी इतना इंसान ये, क्योंकि वो सब में उस एक शख्स एक ज़ात को देखते थे जो सूफी का करेक्टर है।
सही।
तो बाहमी मजाहब में मोहब्बत, इंसान परस्त होना, और बाकी उन्हें तो आप किस हवाले से भी याद करें, मगर मैं तो उन्हें हमेशा एक आला शख्स और अजीम शख्सियत के तौर पर याद रखूंगा और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, हर जगह मेरे साथ होते हैं। तो ऐसा शख्स बार बार कहाँ आता है इस दुनिया में जो सबका दिल जीत ले।
सही बात।
जिससे भी पूछ ले वो कहेगा वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे।
जी जी जी,
हर आदमी,
तो हर एक को अपना ना, ये एक हुनर है और ये मोहब्बत है।
जैसा कि प्रोफेसर साहब तज़किरा कर रहे हैं और मैंने भी उस उस्ताद की उस क्वालिटी के बारे में आपको बताया कि कोई भी जो उस्ताद से मिलता था उसे ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत पहले से उन्हें जानता हूँ। आप देख रहे हैं तेरे लाल हुसैन, मैं हूँ आपका होश गुजारिश भी, मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद।
कुछ और तेरे लाल हुसैन।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं तेरे लाल हुसैन, मैं हूँ आपका होस्ट शुजा रिज़वी। हमारे साथ मोहतरम प्रोफेसर नागपाल साहब तशरीफ़ फरमाएँ, नासिर भाई तशरीफ़ फरमाएँ और उस्ताद के दामाद असफर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं नासिर भाई से सवाल करना चाहूँगा। नासिर भाई, वैसे तो हम इंशाल्लाह होके सारी रात बात करते रहें उस्ताद के मौजू के ऊपर, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि तशना ही रहता है, फिर उसके बाद हमें कोई ना कोई नई बात नज़र आती है। इसकी वजह एक तो अहम तरीन ये कि उस्ताद बहुत ज़्यादा सोशल थे, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते थे, तो लोगों के जहन में बहुत सारे वाक़ात भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं। कुछ रोशनी डालें अगर हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं उस्ताद के हवाले से, कि हमें खुद उस्ताद से मतलब आप क्या दर्स लेते हैं उस्ताद से?
सर मैं तो इतना बड़ा इंसान, एक दफ़ा डिफेंस में एक प्रोग्राम था, आप भी उसमें गए थे, रबी लोकल में जो 10 मिली से पढ़ रहे थे
जी जी,
तो उसमें एक एक दिन लोगों ने सलाम पढ़ना
बिल्कुल ऐसे ही,
तो उसमें उस्ताद की भी दिन बारी थी।
अच्छा,
तो मैंने उस्ताद से बोला
यसरब में,
यसरब में
जी जी।
तो मैंने उस्ताद इसमें से आप चॉइस कर लीजिए कि किस दिन आपने जाना है।
हाँ।
तो कह लेंगे अच्छा जुम्मे वाला दिन रख लो, मेरे को जुम्मे को जो तारीख है वो दे दो मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उस्ताद मेरे साथ चलिएगा। कह रहे भाई तू जाओ, मैं तुम्हारे साथ, मेरे पास मोटरसाइकिल है। मैंने कहा वो आप, मुझे भी पता है आपके पास मोटरसाइकिल है। उसकी वजह यह है कि वो जो बानी मजलिस वो हमारे दोस्त हैं, और तो मैंने एक मजलिस में शिरकत करनी है।
हाँ।
तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जब उस मजलिस में जाना भी है तो ये कि आप मेरे साथ चले जाएंगे तो मेरे लिए सादत भी हो जाएगी।
हाँ।
और थोड़ी सी आपकी मशक्कत कम हो जाएगी।
हाँ।
बाइक पे, तो अगर आप नहीं लेके आप नहीं जाएंगे मेरे साथ तो मैं तो वैसे खुद चला जाऊँगा। तो कह लेंगे अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको बोला मैं इतने बजे आ रहा हूँ आपके पास। जी मैं चला गया। वहाँ से हम निकले, नमाज पढ़ी, वहाँ एक साहब और मिल गए नमाज में। नमाज के बाद वो प्रोग्राम शुरू जाता है, प्रोग्राम होता हुआ वहाँ से गए, जाफर भाई का प्रोग्राम था, जाफर भाई ने घर पे चाय वाय पिलाई। जो तीसरे आदमी मिले ना वो हमारे साथ साथ थे। उसके बाद वो जब उनके घर से निकले तो उन्होंने बोला उन साहब ने कि लेफ़्ट ले ले, राइट ले ले, लेफ़्ट ले ले, राइट ले ले, करते करते उन्होंने घर के सामने गाड़ी का यहाँ रोक दो। इमाम मार्ग के साथी वो था, एक घर था। कह लगे उस्ताद वो जो मैंने आपको कहा था ना, ये वो वाला घर है।
अच्छा।
ये 500 गज का है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको आप 250 यानी हाफ जो है ना
बाइफर्केट कर,
बाइफर्केट मेकअप मैंने कर दिया, इंतजाम कर दिया,
कर दिया है।
हाँ। और आप इसको जो है ना, और बस आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए। अच्छा, हम गाड़ी से उतर के बाहर खड़े हुए। जब उनकी बात ख़त्म हो गई तो उस्ताद ने बोला भाई देखें बात यह है कि मैं यहाँ क्यों रहूँ, जब से मैं खड़ा हूँ यहाँ से कोई टैक्सी भी नहीं गुजरी, कोई रक्षा नहीं गुजरा, मेरे पास तो घर में गाड़ी है नहीं, अगर मेरी फैमिली को कहीं जाना पड़ेगा तो वो पता नहीं कितनी दूर पैदल जाए, दूसरा मुझे सुबह कॉलेज जाना होता है, तो भाई मैं तो दुनिया से अलग हो गया और मैं इससे अलग हो नहीं सकता। मेरा जिस वक्त घर है वो मेरे 10 मिनट का मेरा का सफ़र है, कॉलेज का फासला, और मेरे घर से 10 मिनट के फासले पे 18 इमाम बार गए।
वाह वाह।
जहाँ मुझे मजलिस से पढ़नी होती है और मैं वहाँ आराम से चला जाता हूँ। तो भाई ये तो मैं तो
अपने कट के रह जाऊँगा,
खुद ही अगर मुझे मारना चाह रहे हैं आप तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सोचा, आपने पहले भी कहा था, और उनसे उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत माजरत खाऊँ और मैं ये आपका तोहफा जो है वो मैं कबूल नहीं कर सकता।
वाह वाह।
और बस हंसते हुए वो साहब फिर वहीं रुक गए।
अच्छा।
वो रहते वहीं थे।
अच्छा।
और हम दोनों वहाँ से चले गए। तो बात ये कि क्या आज के दौर में आप देखें लोग लिफाफों पे लड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 500 के लिफाफे पे बोला कि आपने मुझे कम दिए, अबरार भाई को ज़्यादा दिए, वो भी 3 दिन के बाद आके।
अच्छा, 3 दिन में
जी, जब मैं मिला नहीं ना उसको 3 दिन तक, और जबकि उसने उस महफिल में ऑन रिक्वेस्ट पढ़ा था। ये भी देखिए आप मजे की बात, वो वहाँ पे मधु नहीं था
जी जी,
वो हमारे एक वाइस चेयरमैन हैं अभी, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने उसको पढ़वाया था।
सही।
तो सर एक देखिए वो 500 के पीछे क्या आलम है उसका, और यहाँ जो है ना वो
लाखों की जायदाद,
करोड़ों की जायदाद जो है ना वो उसने, और ऐसी ठोकर मार के आदमी आ गया। तो बताइए उनका क्या 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 जिक्र करें सर, क्या वो
सारी रात फरिश्ता रहे, बात करते रहे, वो बात खत्म।
सर फरिश्ता था, लोग कहते थे उस्ताद वली, आप कह रहे नहीं मैं वली नहीं हूँ, बस मैं बन नहीं सका वली, इसलिए कि वली बनने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक कम खाना, कम सोना और कम बोलना। मैं कम सोता हूँ, मैं कम खाता हूँ, लेकिन मैं बोलता बहुत हूँ, इसलिए मैं बलि नहीं हो सका।
इसमें 12 में से टूट
गया। क्या बात है उस्ताद,
कमाल आदमी था।
असफर मैं अब हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मगर भाई वही बात कि उस्ताद की के जो उस्ताद कहते थे कि सुबह से शाम तक महफिलें मजलिसें शर्क से गर्ब तक कू बकू चार सू, मेरी मसरूफियत मेरी मशगूलियत मेरी आवारगी उनसे मंसूब है। क्या सीखा है तुमने उस्ताद से? अब तो खैर तुम्हारा रिश्ता भी बहुत माशाल्लाह मजबूत है मेरे भाई, लेकिन ये कि उस्ताद पहले उस्ताद रहे वो तुम्हारे, उसके बाद रिश्ता इतना मजबूत हो गया, क्या पैगाम दोगे दूसरों को, दोस्तों को जो जिन्होंने उस्ताद का अहद देखा है? मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि उसने उस अहद में हमको पैदा किया कि जिस अहद में उस्ताद जैसी शख्सियत मौजूद थी, और न सिर्फ ये पैदा किया बल्कि उनसे ताल्लुक़ भी दिया, उनकी शागिर्दी थी, और खुदा करे कि हम सब उनके बताए हुए रस्तों पर चल सकें। क्या कहते
हैं नासिर भाई की बात से रब्त में, ऐसे तो कौल रसूल के मज़दाक मम माता अला हुब आले मोहम्मद माता शहीदा, सभी जो आले मोहब्बत मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो सब शहीद हैं, मगर उस्ताद की शहादत वही हद अदब दोबारा जोड़ते हुए एक मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ी सी मुमताज़ में इसलिए कहूँगा वो इख्तियारी शहादत है।
अच्छा,
एक होती है कि शहादत आ पड़ती है, एक होता है पता है कि इस राह पे चलना और ये होने वाला है आज या कल में, और फिर भी अपनी आदमी अपनी राह पे डटा रहे। बिल्कुल, आखिरी वक्तों में अपने काम बहुत तेजी से समेटने लगे थे, सब काम निकलने लगे थे, अंदाजा यही हो रहा था कि उस्ताद जो है कि उन्हें पता चल गया है क्या क्या होने वाला। बिल्कुल, वसीयत इस बात की गवाही है, बिल्कुल दुनिया से जब मैं जाऊं तो अब आप क्या करें,
और शहीद फाउंडेशन के जो इंटरव्यू
जी बिल्कुल
उसमें उन्होंने कहा,
बिल्कुल बल्कि वो जैसे जब ये इंटरव्यू के लिए रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मैं कोने में खड़ा हुआ था उस्ताद के साथ ही, मतलब उसके फ्रेम ख़त्म हुआ तो मैंने उस्ताद से कहा उस्ताद ऐसी बातें मत किया करें तकलीफ़ होती है बहुत, तो उन्होंने कहा नहीं, वो हंस के टाल देते थे इस बात को। इसी तरह से एक दफ़ा जब हमारे मेरे हमजुल डॉक्टर मोहसिन भाई जो हैं उनके भाई का इंतकाल हुआ था उस्ताद की शहादत से चंद दिनों कबल, बल्कि उनका उनके चेहलुम मतलब मेरे ख्याल में एक हफ्ते कबल, तो हम लोग वादी हुसैन में बैठे थे, मैं अख्तर चचा हमारे एक साथी हैं ग़ुलाम हुसैन भाई और उस्ताद, तो उस्ताद ने उनकी तलकीन पढ़ी थी डॉक्टर मोहसिन काजमी के भाई की। मैंने उस्ताद से कहा था उस्ताद कभी उस्ताद मेरा भी ऐसे ही मैंने मजाकन मैंने कहा उस्ताद मेरा भी मौका ऐसा आएगा ना इंशाल्लाह अनकरीब तो आप ही पढ़िएगा तलकीन, तो खिलाफ तवक्को ऐसा मेरा था इसमें कोई पुरमजा जुमला आएगा वे लेट के तो दिखाओ तुम हम पढ़ देंगे कुछ इस तरह। मैंने कहा शायद उस्ताद की दिलजोई करूं, मगर बरक्स उसके जुमला है बेटा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि कितना मुश्किल मरहले होते हैं, तुम लोगों को पाल पोस के और तरबियत देके इसलिए बड़ा नहीं किया कि ये सब करना पड़े। तो उस वक्त मैं बहुत हैरान हुआ था, मैंने ऐसी कैफियत उस्ताद की बहुत कम देखी थी, बल्कि उस वक्त मेरे जहन में भी नहीं कि कब मैंने देखी थी। खैर उस्ताद के पैगाम की जो आपने बात की, मैं कहता हूँ ये सब हमारी बातें हैं जो हमने की हैं, कहता हूँ कि उस्ताद सत्याफत शहीद जो है वो एक तर्ज माशरत का नाम है, अगर हम इसको देखें तो पूरा एक माशरे में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है उसका नाम है रोज़े महशर। शायद हम ये कह के अपना दामन छुड़ाना चाहें कि हम कहाँ और आइम्मा कहाँ, हम कैसे उनकी राह पे चल सकते थे, मुमकिन नहीं था, वो तो मासूम ही थे, तो परवरदिगार ऐसे मौके पे मेरे ख्याल में उस्ताद शहीद जैसे शख्सियात को हमारे सामने ला के रखेगा कि तुम्हारे दौर में थे, तुम्हारी ही तरह रह रहे थे, जो तुम खा रहे थे वही ये खा रहे थे, वही उनकी जरूरियात थी, ये कैसे वली बन गए, ये कैसे पैदा हुई, ये कैसे हुआ काम, तो फिर शायद हमारे लिए वो मौका होगा। और दूसरी बात ये कि ये लोग ये समझते हैं, अच्छा ये भी एक बड़े आदमी की खूबी होती है कि उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जितने काम जिस तेजी से मैं कर रहा हूँ शायद ये आने वाली नस्लों के लिए मुमकिन ना हो, तो उस्ताद के आस पास करीब के लोगों को आप देखेंगे तो किसी में आपको ये हुनर मिलेगा कि वो समाजी काम कर रहा है, कोई शायरी के हवाले से आपको लगेगा पुख्तगी है, किसी में सोजखानी की अदायगी के हवाले से, किसी में अंदाज़े बयां के हवाले से, तो उन्होंने अपनी चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी सब में और सब उसी तरह से काम कर रहे हैं। उस्ताद एक जुमला कहते थे कि मैं खैर इदारे और अपने इदारे के हवाले से कहते थे कि 100 लोग जो है वो मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को दूंगा, अगर मैं तो सिर्फ रिक्रूटिंग एजेंट हूँ, तो हम उस वक्त कहते थे कि उस्ताद ऐसा कैसे मुमकिन है, सब शर्मिंदा। तो ये जुमला अगर हम सब अपने आप को देखें तो ये हमारे लिए शायद झिझोड़ने के लिए काफी है कि हमारा उस्ताद हमसे क्या उम्मीद रख के गया है, सो मैं कहाँ हूँ, इमाम की फौज कहाँ है और क्या जिम्मेदारी। और ये बात कि ये सब बातें जो लोगों तक पहुँच रही हैं तो आज भी जो है सिफ़त जाफर शहीद सबके सबके दिलों के अंदर जिंदा हैं, सबको अंदाजा है कि उनकी शख्सियत कैसे थी, वो किस तरह के काम करते थे, तो सब अगर उस तरह से अपने आप को ढालें तो ज़रूर तब्दीली उनकी ज़िंदगी में भी आएगी, मिल्लत और कौम की जो है उनके जो है उनके अंदर भी तब्दीली एक महसूस करेंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहो, आबाद रहो, खुदा तुम्हें बहुत तरक्की दे, और इंशाल्लाह जो उस्ताद की बताई हुई बातें उस पर उसी तरीके से तुम भी और हम सब भी गामजन रहे।
एक छोटा सा वाक्य मैं शेयर करना चाह रहा हूँ,
ऐड करें फिर माइंड अप करते हैं।
जी हाँ, असल में जब उस्ताद की शहादत हो गई ना तो मुझे एक खातून ने आके एक छोटी सी थैली दी और उन्होंने कहा है कि ये उस्ताद ने दी है और ये उस्ताद के कफन में रखनी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप बाकी लोगों को दे दिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये काम उन्होंने कहा है कि आप ही ने करना है।
अच्छा
अच्छा, कोई इसमें फ़ख्र की बात नहीं है, उस्ताद से कुर्बत ही मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र थी। तो अब वो जब अभी शाम का रात का टाइम है और कल जोहर में होती है, तो मैंने उसको हिफाजत करना मेरे लिए बड़ी होती, तो मैंने उसको रखा। सुबह जब मैं हम जगाजा इन चोली पहुँचा के वापसी में जब मैं घर आया, मैंने कहा कुछ कपड़े नजीस हो गए थे जो मैं ये बस हुई है वो ना, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो मैं घर आ गया, मैंने तो उस पर रहा था, मैंने देखा उसके अंदर एक लॉकेट रखा हुआ था अकीक का और एक ग्रीन कपड़ा था और एक थैली में खाके शिफा थी। अच्छा, वो मुझे वाकयात आया, एक लोडर होता था दुबई में जो उस्ताद का बहुत आशिक था, जब उस्ताद पढ़ते थे तो वो अक्सर आपने वो वीडियो देखी हो तो वो रुमाल और वो डाला करता था। वो फिर वहाँ से डिपोर्ट हो गया, लाहौर आ गया, तो लाहौर में एक दिन उस्ताद पढ़ रहे थे तो उसने वो लॉकेट उस्ताद के गले में डाला, उसकी भी वीडियो है मौजूद। तो उस्ताद ने एक जुमला कहा था कि ये लॉकेट जो है ना मेरी कफन में जाएगा।
अच्छा
जी, और वो उस दिन के बाद से उन्होंने बाकायदा वसीयत के साथ ला के रखा हुआ था। और वो ये शहादत हुई कि ये लोग वहाँ मौजूद थे उस वक्त, मैंने कब्र पे क्योंकि हुक्म था उस्तानी का, मैंने उसको कफन के अंदर रख के और उसके बाद फौरन ही तलखीन पढ़ी जानी थी और मैं कब्र से बाहर आके खड़ा हो गया। भला आप ये देखिए, वो फ़कीरी देखिए आप उनकी, कि एक बहुत ही गरीब आदमी, इंतहा मिस्कीन आदमी, लोग शायद लाहौर में उसको पूछते भी नहीं होंगे इतना जो हमारा माशरे का मिजाज है, लेकिन उस्ताद ने उसको कितनी बड़ी अहमियत दी है कि उसके गिफ्ट को उन्होंने कहा ये मेरी लहज में जाएगा, और क्या इसका फ़लसफ़ा है ये उस्ताद जानते हैं।
वाह वाह, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा गरीब परवर आदमी था।
सर जी, मैं आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये अख्तियारी शहादत को सुने ज़रा। उन पर पहला अटैम्प्ट हो चुका था, आप सब वाकिफ़ होंगे कि रिजविया से कुदरत ने उन्हें बचा लिया और सारे मोबाइल्स पर आ गया सिप्ते जाफर शहीद हो गए। अब ये खबर हम सब चाहने वालों के लिए कितनी अंधोनाक है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत कम आता जाता हूँ, अजीब बात बताऊँ कि प्रिंसिपल चेयर पर भी उसे मैंने बिठाया था कि जब तक आप नहीं आएंगे मैं नहीं बैठूँगा। मैं अपने घर से निकला, स्पेशली इसके ऑफिस आया ये कहने के लिए कि तुम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, क्योंकि अब मुझे यकीन था कि अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो शहादत। बड़ा शौक था, मैंने किसी शख्स में ऐसा नहीं देखा, आपने इसकी तहरीर पढ़ी होगी, मैंने पहली मीटिंग पे वो बाकायदा लेकर पूरी सुनाई थी, आप सब जानते हैं कि किस तरह सब कुछ लिख के गया और शौक शहादत और इतना निडर आदमी, ये सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप आशिक हुसैन हैं तो शहादत का शजरा है। क्या आपका मतलब इतना शौक था। मैं उन्हें ये कहने क्या कि सुनो मैं स्पेशली आया हूँ तुम्हें कि तुम बच्चों को लेकर करबला चले जाओ, तुम्हारा घर है वहाँ और वैसा इस जगह पर है कि सामने रोज़ा रोज़ दीदार करो सुबह शाम, मेरी बात मानो, तुम्हारा शौक शहादत सर आँखों पर, भाभी बच्चों और हम लोगों का भी हक है ना, हमें अभी तुमसे बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ सीखना है। मगर वो मेरी बात न माने, और सच कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल उन्हें पता था, क्या कहते थे वो आपने भी पढ़ा होगा कि इस शहादत को इस तरह नहीं बनाना कि मैं हॉस्पिटल में पढ़ा रहा हूँ, कि लोग मेरी तकलीफ़ों से तंग आ जाए, मुझे उसी वक्त शहादत देना मौला, और आपने देखा ऐसा ही हुआ। क्या हो सकता है कि मौला इनकी बात को टाले, सच कह रहा हूँ।
इस तरह वो जुमला याद है उस्ताद के, उस्ताद कहते थे कि वादी हुसैन जाना भी शिफा
शिफा।
शहीदों के लिए कलाम कहता हूँ, शहदा की मजलिस पढ़ता हूँ, और शहदा की जिंदगी में पर काम करता हूँ। मुझ पे वक्त शहादत आए तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ।
मौत तेरे महबूब को आती नहीं, आती है तो फिर बच के जाती नहीं। तो बस ये जो कलाम है ना,
बस सही बात है। अगर सब खर खुदा जो है वो नर्च बात है कि उस्ताद की शहादत के बाद उस्ताद के दोस्त तो ख़ुद को यतीम महसूस करते हैं। बहुत अजीम शख्सियत थी, हम सारी रात भी बैठ के उस्ताद के लिए बात करते रहे, तो शायद ये इसके लिए एपिसोड्स चाहिए कि हम जो है मुस्तकिल उस्ताद के हवाले से बात करते रहे। और ये पूरा ख़ुद वो अपनी ज़ात में यूनिवर्सिटी थे, लोगों हमने उनसे बहुत सीखा है, और बल्कि आज भी उनकी जो बताई हुई बातें हैं वो तकवीत भी देती हैं और सिखाती भी हैं, याद आती है बहुत ज़्यादा उस्ताद की। मैं इंतहाई मशहूर हूँ प्रोफेसर नागपाल साहब का कि वो तशरीफ़ लाए। नासिर भाई आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप आए, आपने रोशनी डाली उस्ताद के किरदार के हवाले से। और मेरा दोस्त असफर उस्ताद के दामाद, जिन्होंने बहुत करीब से उस्ताद को देखा, घर के अंदर देखा, और उसके हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे किसी दूसरे शहीद की गुफ्तगू के साथ, इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। ये प्रोग्राम है तेरे लाल हुसैन, मैं हूँ आपका होस्ट शुजा रिज़वी। सलामत रहें, आबाद रहें, अल्लाह ने के बाद।